आज है 26 फरवरी दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। हरियाणा में मूर्थल हाईवे पर महिलाओं के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने की खबर पर डीजीपी ने कहा,
पुलिस विभाग को ऐसी कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जिससे ये साबित हो सके कि इस प्रकार का कोई अपराध वहां पर हुआ है।
रोहित वेमुला के परिवार ने स्मृति ईरानी पर लगाया गलत बयानी का आरोप। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 विमान बेचे जाने के फैसले का किया एतराज। और आज विवेचना में जानेंगे प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय के तस्वीरों के पीछे की कहानी।
उस बच्चे की भोली वाले फेस पे आंखें खुली हुई थी, तो वो भोले से चेहरे की वो खुली आंखें जिनमें एक्सप्रेशन खत्म हो गया है।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान दिल्ली से सटे मूर्थल के नजदीक महिलाओं से कथित बलात्कार की खबरें आने के बाद अब इनकी जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें डीआईजी रैंक की एक अधिकारी समेत 3 महिला अधिकारी हैं। पीड़ित महिलाओं या घटना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से इन अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार सोमवार की सुबह मूर्थल के निकट महिला यात्रियों को रोककर उन्हें पास के खेतों में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने भारत के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम बना दी है। इस 5 सदस्यीय टीम में आतंकवाद निरोधी विभाग और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। 19 फरवरी को गुजरांवाला के आतंकवाद निरोधक थाने में पठानकोट घटना पर एक FIR भी दर्ज की गई थी। ईरान में आज चुनाव हो रहे हैं। पिछले साल अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर विश्व महाशक्तियों के साथ हुए समझौते के बाद से ईरान में होने वाले ये पहले चुनाव हैं। मतदाता नई संसद के लिए वोट डाल रहे हैं, साथ ही वो देश की धार्मिक संस्था के सदस्यों को चुनने के लिए भी मतदान कर रहे हैं। यही संस्था ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता भी चुनती है, जो इस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, रिपोर्ट आ रही है कि मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा है, जिसकी वजह से सब कुछ शांति से चल रहा है। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और भारी मतदान हुआ है। ये चुनाव ईरान के भविष्य को लेकर बड़े अहम हैं। उम्मीद है लोग एक आत्मनिर्भर और मजबूत संसद चुनेंगे। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने इसमें सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सुझाए गए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इन प्रस्तावों के तहत अब फीफा के सदस्यों का एक तयशुदा कार्यकाल ही होगा, इसमें अध्यक्ष भी शामिल है। साथ ही फीफा काउंसिल में कम से कम 6 महिलाओं को चुना जाएगा। स्विट्जरलैंड में फीफा की चल रही बैठक में अब से कुछ ही देर बाद फीफा के नए अध्यक्ष के लिए वोट डाले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के टोक्यो सेखवाले के अपना नाम वापस लेने के बाद अब चुनावी मैदान में 4 उम्मीदवार ही बचे हैं। इसराइल की जेल में बंद एक फलस्तीनी पत्रकार ने अपनी 94 दिनों से चली आ रही भूख हड़ताल खत्म कर दी है। मोहम्मद अलकिक को बिना किसी मुकदमे के पिछले साल नवंबर से जेल में रखा गया है। फलस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद अलकिक भूख हड़ताल की वजह से लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गए थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस साल मई में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसराइली अधिकारियों ने बताया कि मई में हालात का जायजा लिया जाएगा, तब इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो BBCHindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य में जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा में 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि रेल सेवाएं और सड़क परिवहन सुचारू रूप से अब चल रहा है और सेना को धीरे धीरे प्रभावित इलाकों से हटाया जाएगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल का कहना था,
जो सूचना मेरे पास है सुबह 10 बजे तक की, उसके हिसाब से 713 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और हमने ये आदेश दे दिए हैं कि जो भी व्यक्ति अपना मुकदमा दर्ज कराने थाने में चौकी में आता है, उसका मुकदमा तुरंत प्रभाव से दर्ज किया जाए। हमने अभी तक 133 व्यक्तियों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभी कोई मेजर बड़ा पॉलिटिकल लोग नहीं है और बाकी हम आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो आर्सन में, लूटिंग में और कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये सरकार का फैसला है।
साथ ही उन्होंने कहा कि जाट आंदोलन के दौरान राज्य में पिछले सप्ताह मुरथल हाईवे पर महिलाओं के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने की खबर की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल का कहना था,
पुलिस विभाग को ऐसी कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जिससे ये साबित हो सके कि इस प्रकार का कोई अपराध वहाँ पर हुआ है। टॉप प्रायोरिटी पे पूरे कंपैशन के साथ, सेंसिटिविटी के साथ इन मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई भी आदमी जो ये सूचना देगा उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा और विक्टिम की आइडेंटिटी तो हम कानून के हिसाब से भी गुप्त रखते हैं।
ये थे पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल के शब्द। इस बीच राज्य में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है। वहीं इससे पहले कल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि जाट आंदोलन के दौरान कथित यौन शोषण की शिकार हुई महिलाएं घटना के बारे में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पत्र, ईमेल या किसी रिश्तेदार के जरिए सूचित कर सकती हैं। अदालत ने यह आदेश अखबार ट्रिब्यून में छपी एक खबर का संज्ञान लेते हुए दिया है। मैंने इस मामले पर चंडीगढ़ में मौजूद स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा से बात की।
इस मामले में आज डीजीपी साहब यशपाल सिंघल जी ने दोबारा से मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक 3 मेंबरी कमेटी बना दी है जिसकी अध्यक्षता डीआईजी राजश्री सिंह करेंगे और उसमें 2 और पुलिस डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं। ये लोग अब सोनीपत में 24 घंटे स्टेशन रहेंगे, वहाँ लोग ईमेल से, वीडियो क्लिप से, जिस भी तरह से जो कोई जानकारी दे सकता है उसको गोपनीय रखने के लिए बोला जाए, उनकी जो गवाही देगा उसको पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और दूसरा ये कि जो इस मामले में और किसी अखबार ने भी कुछ नई जानकारी लाए हैं और वो नई जानकारी के हिसाब से वो कहते हैं कि कोई अंडर गार्मेंट्स वहाँ मिले हैं महिलाओं के, तो उनको पुलिस अब उनकी जांच कर रही है कि वो क्या उसी घटना से संबंधित हो सकते हैं या वो पुराने हैं या नए हैं।
और क्या अभी तक कोई खुलकर सामने आ पाया है इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए?
सबसे बड़ी दिक्कत पूरी जांच में यही आ रही है कि कोई खुल के सामने नहीं आ पाया है और जो लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा देखा हो सकता है, जिनको इस बात का आभास था, जिस तरह से शोर शराबे की बात कुछ लोग कह रहे हैं, उनमें से भी कोई सामने नहीं आया है। अभी कोर्ट के सामने तक पहुंच जाए तो शायद रास्ता आगे बढ़े, लेकिन आज भी दोबारा से ट्रिब्यून ने एक खबर छापी है जिसमें एक किसी दिल्ली के व्यापारी को उन लोगों ने कोट किया है कि उनको लगता है ऐसी घटना हुई हो सकती है क्योंकि वो कुछ आवाजों का जिक्र कर रहे हैं। 22-23 तारीख की रात को करीब 3 बजे घटना हुई बताई जाती है और वो कुछ आवाजों की बात कर रहे हैं कि हम लोग भी उसमें फंस गए थे, हमने भी हमला होने की स्थिति बनी, हम आगे निकल गए, लेकिन अब जब हम किसी होटल पे ठहरे हुए थे तो हमें इस तरह की आवाजें सुनाई, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जा सकता, कोई उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं है घटना का।
जी वही ये देखा जा रहा है कि ये जो जाट आंदोलन हुआ और उसके बाद जो घटनाएं हुई, लग रहा है कि जैसे समाज जो है वहाँ का उसमें दरार पड़ गई है।
जी बिल्कुल, दरार का हाल तो ये है कि वो दरार मनोहरलाल खट्टर सरकार की कैबिनेट तक पहुंच गई है। वहाँ पे एक करणदेव कंबोज मंत्री हैं जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, उन्हें तो कम से कम रिजाइन करने तक का ऑफर कर दिया। उनका कहना है जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तय कर दी कि जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उस हालत में सरकार ये वादा कैसे कर रही है। और इसी मामले में आज एक जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो एक मीटिंग दिल्ली में कर रहे हैं और जिससे कि वो अपने विधायक और एमपी से वो पहले बात कर चुके हैं, आज विधायकों से वो उनकी राय जानना चाह रहे हैं इस मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि ये जो बंटवारा है जाट और नॉन जाट को बहुत बहुत गहरा हो चुका है। ये जो बंटवारा हुआ है जाट और दूसरे जाट के बीच में, वो स्थिति ऐसी बन गई है कि जो जाट और नॉन जाट अलग अलग जिन इलाकों में रह रहे हैं, अगर वो वहां पे बहुतायत में नहीं है तो इस बात तक विचार कर रहे हैं कि क्या हमें इस जगह रहना चाहिए, हम यहाँ सुरक्षित हैं या हमें कोई और नई जगह ढूंढनी पड़ेगी।
ये थे चंडीगढ़ से स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा।
बीबीसी इंडिया बोल।
10 दिन तक हरियाणा में हिंसा का तांडव, 30 लोगों की मौत। गुजरात में पटेलों के बाद हरियाणा में जाट आंदोलन के क्या हैं सबक? ये आरक्षण का आंदोलन था या फिर जातीय वैमनस्य? क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पाट सकेगी समाज में आई दरारों को? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। अपनी राय जाहिर करने के लिए 27 फरवरी शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या फिर 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
रोहित वेमुला के परिवार और दोस्तों का कहना है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में गलत बयानी की है। दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रोहित के मां का कहना था कि उनके बेटे की आत्महत्या के बाद से आज तक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उनसे बात तक नहीं की है। दिल्ली से सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
ये हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका, जो अफसोस जता रही हैं कि इतने दिन बीत गए उनके पुत्र द्वारा आत्महत्या किए, मगर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने एक बार भी उनसे बात तक नहीं की। सुहानुभूति तो दूर की बात है। दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में उनके साथ मौजूद रोहित के दोस्तों ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के संसद में दिए गए उस बयान को गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहित की आत्महत्या के बाद ना तो डॉक्टर और ना ही पुलिस को ही विश्वविद्यालय में घुसने दिया गया। रोहित के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रशांत ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
यूनिवर्सिटी मेडिकल ऑफिसर ने आके रोहित का डेथ कंफर्म किया था। 7:30 को उन्होंने आके रोहित का डेथ कंफर्म किया था। पुलिस भी आई थी, पुलिस को अंदर भी अलो किया गया था। रोहित की माँ आई थी अंदर, रोहित की भाई आई थी, हम सब उधर थे। स्मृति ईरानी जी ने पूरा झूठे बात, ये पूरा इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए उन्हों बात कर रहे हैं। उन्हों पार्लियामेंट में ये बात करना वो समुचित नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट। और स्मृति नरेंद्र मोदी जी ऐसे वाली मिनिस्टर्स को तो ज़रूर निकालना चाहिए, और मिनिस्टर फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक्शन भी लेना चाहिए, अपर आउट के ऊपर भी एक्शन लेना।
वहीं राधिका ने आरोप लगाया कि रोहित की नानी को जाति के सत्यापन के नाम पर प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। राधिका कह रही थी कि जांच करने वालों ने उनकी बूढ़ी माँ को 5-5 घंटों तक बैठा कर रखा, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो कह रही थी कि पहले उनके बेटे की मौत हुई और फिर उनकी माँ की मौत हुई। वो पूछ रही थी कि कितने और लोग मरेंगे तब इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ रोहित की जाति को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि गुंटूर जिला प्रशासन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वो अनुसूचित जाति से नहीं बल्कि अन्य पिछड़ी जाति से आते थे। प्रशासन के इस बयान पर प्रशांत का कहना था,
गुंटूर तहसीलदार ने ये सर्टिफिकेट दिया था पहले, और अगर ये सर्टिफिकेट को कंटेस्ट करना है तो मैजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी करना पड़ता, अभी वो इंक्वायरी शामिल है।
बहरहाल रोहित वेमुला के मुद्दे पर बहस जारी है, और अब परिवार की मांग है कि पूरे मामले के लिए एक विशेष जांच दल का गठन होना चाहिए, और वो भी वहां के अधिकारियों का जहां भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े दल की सरकार न हो। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ, और अब चल रहे हैं अमरीका। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन की ओर से पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमान बेचे जाने के फैसले पर रोक लगाने के लिए अमरीकी कांग्रेस ने एक साझा प्रस्ताव पेश कर दिया है, और कुछ वरिष्ठ सीनेटरों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, ये बताए कि इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है।
देखिए सुशीला, ये प्रस्ताव सेनेटर रैंड पॉल और प्रतिनिधि सभा के सदस्य डेना अरोरा बैकर ने पेश किया है। रैंड पॉल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोहरा खेल खेलता रहा है, और हम उन्हें अरबों डॉलर देते हैं और उनकी फौज अफगान तालिबान की मदद करती है। उनका ये भी कहना था कि इसके अलावा पाकिस्तान ने शकील अफरीदी, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और मारने में अमेरिका की मदद की थी, उन्हें जेल में बंद कर रखा है, और साथ ही वहां मानवाधिकारों का भी खासतौर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ खासा उल्लंघन हो रहा है। वहीं डेना रोरा बैकर ने कहा कि पाकिस्तान इन हथियारों को अपने ही नागरिकों, खासतौर से बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए इस बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए।
जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि क्या अब ये डील रुक जाएगी।
देखें, कांग्रेस को 12 मार्च के पहले इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जतानी थी, तो वो कर दिया है उन्होंने, लेकिन पहले ये प्रस्ताव विदेश मामलों की समिति के सामने जाएगा, और अगर वो इसे मंजूर कर देते हैं तब आप समझ, और अगर ये पास हो गया तो ये डील रुक जाएगी। विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन बॉब कॉर्कर इस डील के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपने पैसे से ही विमान खरीदना चाहे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अमरीकी जनता के पैसे से वो पाकिस्तान को F-16 देने की मंजूरी नहीं देंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये थे वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। और अब बात विवेचना की। अगर रघु राय को भारत का महानतम जीवित फोटोग्राफर कहा जाए तो अधिकतर लोगों को आपत्ति नहीं होगी। पिछले 50 सालों में रघु राय के कैमरे से ऐसी अद्भुत तस्वीरें खींची गई हैं जिनका पूरी दुनिया ने लोहा माना है। पिछले दिनों उनकी एक किताब प्रकाशित हुई जिसमें उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर खींचे गए बेहतरीन चित्रों का नायाब संकलन है। आज की विवेचना में रेहान फजल बता रहे हैं इन शाश्वत कभी ना भुलाई जाने वाली तस्वीरों के पीछे की कहानी।
लेकिन अगर हम ये कहें कि हकीकत से कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरत तस्वीर है, और तस्वीर भी ऐसी जिसके हर बिंदु, हर कोण, हर बिंब से एक अफसाना बयान होता हो, तो आप क्या कहेंगे? जिनकी खींची तस्वीरों का जिक्र हो रहा है वो और कोई नहीं, कैमरे के बेमिसाल बादशाह रघु राय हैं। राय उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने भारत की पिछले 50 साल की यात्रा को अपने कैमरे के लेंसों में कैद किया है। इस सफर की शुरुआत हुई थी 1965 में, जब उन्होंने पहली बार गधे के एक बच्चे की तस्वीर खींची थी।
मैं अपने बड़े भाई एस पॉल के पास आके ठहरा, जो फोटोग्राफर है, तो वहाँ उनके दोस्त भी जो आते थे सब कैमरा वाले फोटोग्राफर्स, कैमरा की बात करते थे, लेंजेस की बात करते थे, फोटोग्राफ्स की बात करते थे। तो एक योग जॉय थे, बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत सेंसिटिव, तो वो हरियाणा में उनकी ज़मीनें थी, तो वो पॉल भाई से मिलने आए और फिर वो जा रहे थे, तो वो एक दिन हमारे पास रहे, तो मुझे वो अच्छे लगे, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ आ जाऊँ घूमने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो। तो जाते जाते मैंने अपने बड़े भाई से कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे भी एक कैमरा में फिल्म लोड कर दीजिए, मैं भी देखूंगा। तो उन्होंने एक फिल्म लोड कर दी, थोड़ा मुझे लाइट का समझा दिया, तो मैं उनके साथ चला गया। तो गांव में वो गांव के बच्चों की और विलेज लाइफ की तस्वीरें खींचते रहे, मैं खड़ा देखता रहा। तो शाम के टाइम में एक बेबी डोंकी खेतों के बाहर खड़ा था, बड़ा क्यूट सा लग रहा था, बुद्धू सा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही तस्वीर खींच ली। तो भाई साहब ने वो तस्वीर प्रोसेस करा के देखा, तो कहने लगे भाई ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर है। मैंने कहा अच्छा जी। 60s में 70s में द टाइम्स लंदन न्यूज़पेपर यूज टू पब्लिश हाफ पेज फोटोग्राफ, वीकेंड फोटोग्राफ, जिसमें कुछ आयरॉनिक हो, कुछ ह्यूमर हो, कुछ मस्ती हो, कुछ अनयूजुअल हो। तो उनको भेजी, जब गई तो उन्होंने तुरंत आधा पेज छाप दी मेरे नाम के साथ। तो पहली तस्वीर टाइम्स में छप जाए वाज क्वाइट एन किक, यू नो, कि वाह वाह बात बनती नजर आती है।
रघु राय की किताब की एक तस्वीर बरबस आपका ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें इंदिरा गांधी अपने दफ्तर में बैठी हुई हैं और उनको गुजरात के विधायकों ने घेरा हुआ है। रघु राय ने ये तस्वीर इंदिरा गांधी के पीछे खड़े होकर उनके कंधे के ऊपर से ली थी।
जब वो घर से ऑफिस गई तो उनकी मीटिंग गुजरात के पॉलिटिशियंस MLA से थी, जो पूरी की पूरी कैबिनेट जैसे अंदर चली आई हो। अपेरेंटली वो अपना कोई मेमोरेंडम लाए थे जिसकी अप्रूवल चाहते हैं, पर उन सब के चेहरों पे जो एक्सप्रेशन एंग्जाइटी के और इंतज़ार के हैं, दिस शोज के इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल थी। एंड नोबडी स्पोक अ वर्ड टू इंदिरा जी कि भई आप ये है, ऐसा है या हमारा वैसा है, या आप ये कर दीजिए, दे जस्ट वेटेड।
किसी ने शायद ये सही कहा था कि इंदिरा गांधी अपने मंत्रिमंडल में अकेली पुरुष थी। 1971 में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की खींची गई तस्वीरों ने रघु राय को विश्व के आला दर्जे के फोटोग्राफरों की कतार में ला खड़ा किया था। 1971 में वो भारतीय सेना के साथ साथ बांग्लादेश में घुसे थे, और जब जनरल जग्गी अरोड़ा जनरल नियाजी का सरेंडर लेने वहां पहुंचे थे तो रघु राय ढाका हवाई अड्डे पर पहले से मौजूद थे।
फर्स्ट कॉलम जो अटैक करता है इंडियन आर्मी का, उसके साथ भी मैं गया अंदर बांग्लादेश के अंदर। आई वेंट देयर फॉर द सरेंडर ऑल्सो, वेयर आर जनरल्स एंड जनरल नियाजी, दे आर वॉकिंग टुगेदर टुवर्ड्स द प्लेस वेयर दे हैव टू साइन द सरेंडर। आर जनरल एंड जनरल नियाजी दे वर वॉकिंग टुगेदर एंड यू कुड सी जनरल नियाजीज हेड डाउन विद एम्बैरेसमेंट एंड शेम and our generals looking up, so all those expression जो कि convey करते हैं कि who's victorious and who's lost it।
रघु राय के चित्र भारत के विभिन्न रंगों को एक आईने की तरह दिखाते हैं। जिंदल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर शिव विश्वनाथन कहते हैं कि रघु राय की फोटोग्राफी पश्चिमी संकल्पना निगाह और जिसे जॉन बर्गर देखने का नाम देते हैं से अलग है। बकौल उनके, राय की फोटोग्राफी एक तरह का दर्शन है, दार्शनिक वाला दर्शन नहीं बल्कि भगवान को देखने वाला दर्शन।
रघु राय कहते हैं कि रियलिटी इज नॉट आउटसाइड यू, वो कहते हैं कि आप जो जिस तरह से देखते हैं उस तरह चित्र बनता है। तो उनके कारण बोलते हैं कि दर्शन जो है एक तरह का रिस्पेक्ट है, एक तरह का भक्ति है। आप जब लुक करते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी है, जब ऑब्जर्वर देखता है वो लेंस से सिर्फ फैक्ट्स देखता है, रियलिटी देखता है, बट जो आदमी दर्शन से देखता है वो कुछ और चीज देखता है। वो देखता है कि दूसरे आदमी में किस तरह का सेक्रेटनेस है, किस तरह का भक्ति है, किस तरह का रियलाइजेशन है।
1977 में इंदिरा गांधी की हार को भी रघु राय ने सांकेतिक चित्र में कैद किया है, जिसमें कूड़ा उठाने वाला इंदिरा गांधी के फटे हुए पोस्टर को उठा रहा है और उसके सामने की दीवार पर परिवार नियोजन का नारा लिखा है, हम दो हमारे दो। रघु राय बताते हैं कि उनके संपादक कुलदीप नैयर ने उस चित्र को छापने से इनकार कर दिया था।
इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी 75-77 था, जो लोगों को निहायत ही नापसंद था, और उन्होंने कुलदीप नायर हमारे एडिटर थे उनको भी अरेस्ट करवाया because he used to write against it. तो जब 77 की elections होने लगी तो I went photographing every rally. तो rallies पे मैं, मुझे जो feel आया कि कांग्रेस जो है दम तो लगा रही है लेकिन पिटने वाली है। तो जब elections हुए जिस दिन, उन दिनों तो एक ही दिन में पूरे देश में elections हो जाते थे, तो मैं ओल्ड दिल्ली में जामा मस्जिद के एरिया में election cover करके वापस लौट रहा था। एक गरीब आदमी सारे पोस्टर्स इकट्ठे कर रहा था जिसमें इंदिरा गांधी का चेहरा बड़ा सा दिखाई देता है पोस्टर में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक बात ये भी थी कि दीवार जो थी जिसके अगेंस्ट वो खड़ा था उस पे हम दो हमारे दो का जो फैमिली प्लानिंग का हिस्सा दिखाई दे रहा था। आई थॉट माई गॉड व्हाट अ सिचुएशन, आई गॉट द सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग, ट्राइंगल एंड द फैमिली एंड हम दो। वो हमने तस्वीर में बना के लेके आया, मैं शाम को कुलदीप नायर को दिखाई, कहता वेरी गुड पिक्चर, कमाल है, दिस एक्सप्रेसेस एवरीथिंग, पर यूज़ नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, कहने लगे कि नहीं नहीं अगर वो हारी नहीं ना तो तुम और हम दोनों जेल में होंगे। मैंने कहा नायर साहब प्लीज़ बिलीव यू मी, दे आर लूजिंग इट। कहते रघु यार तुम इतना इमोशनल नहीं हो। मैंने कहा मैं इंस्टिंक्टिव आदमी हूँ एंड आई एम टेलिंग यू आर लूजिंग इट। ही सेज नहीं ऐसा नहीं हम कर सकते। तो मैंने तस्वीर ली, गुस्से से फाड़ के फेंक दी। मैंने कहा नहीं मैं ऑफिस ही नहीं आऊँगा। तो दूसरे दिन 4:30-5 बजे कुलदीप नायर साहब रघु राय को ढूंढ रहे हैं। तो जब पता चला कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो फिर उन्होंने घर पे मुझे फ़ोन किया कि यार कहाँ हो तुम, कांग्रेस हार रही है वो तस्वीर यूज़ करनी। मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आज नहीं यूज़ करोगे कल नहीं मैं आऊँगा। देन ही सेड आई एम वेरी सॉरी, आ जाओ तुम, अब बड़ी छापेंगे। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ फोटो एडिटोरियल which commented the defeat.
रघु राय को 1974 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान की तस्वीरें खींचने का भी मौका मिला था। वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को नजदीक से जानने लगे थे और उन्हें पाजी कहकर पुकारते थे, लेकिन इसकी वजह से वो एक बार बहुत मुश्किल में पड़ गए थे।
In age he was younger to me. Instead of calling him Bhindranwale ji, I thought I, because he's a sardar and I'm a Punjabi, so I used to call him paji. वन नाइट उनके जो खास दो आदमी थे भिंडन वाले के, वेरी यंग आई मीन वेरी हैंडसम सरदार्स हु यूज टू वील्ड गन्स, तो वो आए, नॉक किया दरवाजे पे, मैं खोला, मैंने कहा जी बताइए आप कैसे आए। कहते नहीं हम आपसे बात करने आए। मैंने कहा बताइए। कहते हैं देखिए आप फोटोग्राफ करते हैं, आप जो भी करते हैं उनके आसपास घूमते हैं वो तो ठीक है, पर वो आपके पाजी नहीं है, वो आपके भाई नहीं है, हैं, वो संत बिंडन वाले हैं। मैंने कहा बात सुनिए, मेरी उम्र उनसे बड़ी है और उनके साथ मेरी एक रिलेशनशिप कायम हुई है, अगर मैं उनको पाजी कहता हूँ और उनको बुरा नहीं लगता आपको क्यों बुरा लगता है। कहते नहीं वो हमारे संत हैं और आप दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे।
और ऑपरेशन ब्लू स्टार से एक दिन पहले आप उनसे मिले थे?
क्योंकि मेरी भिंडन वाले से पुरानी रिलेशनशिप थी पिछले 1.5-2 साल की, और पाजी बाजी यू नो एंड न्यू माई नेम एवरीथिंग, सो मैंने मैसेज भेजा कि मैं आया हुआ हूँ और मैं तो आपको मिलना है ज़रूरी। तो वो अकाल तख्त में सेकंड फ्लोर पे थे छुपे हुए, बड़ी मुश्किल से मुझे वो इनके सपोर्टर ले गए ऊपर। तो उनकी आंखें जो थीं गुस्से और फियर से भरी हुई थी, बिकॉज तब तक उनको इस बात की समझ आ गई थी कि अब जो है मामला काफ़ी सीरियस होने लग गया है, अगर आर्मी ने घेर लिया है तो अब वो छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे कहते तू क्यों आया थे, मैं क्या, अरे पाजी आई हैव बीन फोटोग्राफिंग यू फॉर एवरीथिंग, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त। कहते मैं देखांगा, मैं वो कर दांगा, मैं देखांगा किस दी हिम्मत है जड़ा हाथ लांदा है, जड़ा अंदर आंदा है। एंड आई कुड सी द फियर।
रघुराय ने ताजमहल की जितनी कोड़ों से तस्वीरें ली हैं उतनी कम लोगों ने ली है। एक बार उन्होंने वायुसेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन का हैच खुलवाकर ऊपर से ताज की तस्वीरें ली थी। उस समय रघुराय को पीछे से 2 लोगों ने पकड़ा हुआ था कि कहीं वो तस्वीर खींचते समय हवा में ना उड़ जाए।
उन दिनों लद्दाख में आर्मी ऑपरेशंस की प्रैक्टिस हो रही थी, तो एयर चीफ मुलगांवकर जो थे वाज अ वंडरफुल यू नो वेरी फ्रेंडली पर्सन, सो ही इनवाइटेड सम ऑफ अस फ्रॉम द प्रेस। सो ही जस्ट आस्क्ड मी, ही सेज क्या कर रहे हो रघुराय तुम आजकल? मैंने कहा ओह आई एम डूइंग अ बिग बुक ऑन ताजमहल। सडनली इट ऑकर्ड टू मी, मैंने कहा यार ये तो एयर चीफ है। तो मैंने कहा चीफ आई हैव टेकन पिक्चर्स ऑफ ताजमहल इन विंटर इन समर इन मानसून एवरीवेयर फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड ओनली वन एंगल इज मिसिंग। सो ही सडनली स्माइल्ड, ही सेज आई नो विच वन। ही टोल्ड हिज डिफेंस पीआर मैन कि इनका टाई अप करा दो आगरा ले जाके और इनको लेट हिम फ्लाई ओवर ताजमहल। सो आई टुक दैट पिक्चर ताजमहल and the Jamuna River in the background. So that was very important picture. I did a big book on Taj Mahal.
Jab aanchal raat ka lehraaye aur sara aalam so jaaye tum mujhse milne shama jala kar Taj Mahal mein aa jaana tum मिलने।
लेकिन जिस तस्वीर ने रघुराय को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दी वो थी भोपाल गैस कांड के बाद एक 2 साल के बच्चे को दफनाए जाने की बार बार याद आने वाली तस्वीर।
पहले तो हमने फोटोग्राफ किया ऑल दोज डेड्स हु वर बीइंग ब्रॉट टू हमीदिया हॉस्पिटल, जो बहुत बुरी हालत में थे उनको वहाँ लाया जा रहा था, बच्चे भी थे औरतें भी थी, रास्ते में एनिमल्स मरे पड़े हैं, उनकी बॉडीज ब्लोटेड हैं। फिर वहाँ से हम क्रीमेशन ग्राउंड में गए जहाँ मुस्लिम्स अपने डेड्स को दफना रहे थे और जहाँ हिंदू अपने डेड्स को जला रहे थे। तो जब हम वहाँ मुस्लिम्स की सिमेट्री में गए तो वहाँ पे एक एक गहरी कब्र खोदते थे और उसमें दो दो तीन तीन लोगों को डाल देते थे एक दूसरे के ऊपर और बंद कर देते थे। तो ये बच्चा जो था शायद तीसरी बॉडी थी जो उसको बैरी करने वाले थे। अभी आधी मिट्टी डाली थी, उसका फेस दिखाई दे रहा था। और जो उसमें ट्रेजिक और सैड और टचिंग बात थी वो ये थी कि उस बच्चे की भोली भाले फेस पे आंखें खुली हुई थी। तो वो भोले से चेहरे की वो खुली आंखें जिनमें एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया है, कोई भी देखता था तो सोचता था हे भगवान ये क्या हुआ।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
आप रेहान फजल की विवेचना विश्व भारती में सुबह 8 बजे दोबारा सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले मुख्य समाचार।
BBC समाचार। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान दिल्ली से सटे मुरथल के नज़दीक महिलाओं से कथित बलात्कार की खबरें आने के बाद अब इनकी जांच के लिए पुलिस ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने भारत के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम बना दी है। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने इसमें सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सुझाए गए प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे प्रभात पांडे। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।